खंड दूसरा अध्याय तीसरा। सन 1970 शीघ्र ही समाप्त होने वाला था। हाल ही में मैं 20 वर्ष का हुआ था और हिमालय के सपने मुझे उत्तर दिशा की ओर खींच रहे थे। मैं जहां जा रहा था उसके विषय में मुझे अधिक ज्ञान नहीं था। मुझे केवल इतना ज्ञान था कि विश्व का ये क्षेत्र अनेक साधु संतों की निवास स्थली है और उनसे मिलने और सीखने के लिए मैं उत्कंठित था। भारत में आकर मुझे लगा कि मैं एक महान खोज के कगार पर था और मैं इतना उत्साहित था कि मुझे अपने परिवार की कमी अधिक नहीं खल रही थी। उन्हें मेरा पता मालूम नहीं था, इसलिए यहां आने के पश्चात मुझे उनका एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी हिमालय की यात्रा करने से पहले मैंने दूर अपने घर ये संदेश भेजा, प्रिय माँ, पिताजी मार्टी और लैरी, आज मैं दिल्ली छोड़कर अध्ययन हेतु पर्वतों पर जा रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि मैं वहां से आपको नियमित पत्र लिख पाऊंगा या नहीं। यदि कुछ समय तक मैं आपको पत्र नहीं लिख पाया तो कृपया घबराइएगा नहीं। जब भगवान मेरे साथ हैं तो कौन मुझे हानि पहुंचा सकता है। सप्रेम रिचर्ड। मैं रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में निःशुल्क बैठकर ऋषिकेश की ओर चल पड़ा, जो हिमालय में अनेक आश्रमों से भरा एक पवित्र धाम है। दिल्ली को काले धुएं के बादलों में पीछे छोड़ते हुए कोयले का इंजन जब आगे निकला तो मैं खिड़की से सूर्योदय होता देख रहा था। उसे देखकर मैं प्रार्थना करने लगा कि हिमालय की ये यात्रा मेरी आध्यात्मिक खोज में एक नए दिन का शुभारंभ करे। घंटों पश्चात मैं हरिद्वार पहुंचा, जो दिल्ली से 140 मील उत्तर पश्चिम में गंगा के तट पर बसा एक तीर्थ स्थान है। वहां से ऋषिकेश के लिए बची 15 मील की यात्रा मैंने पैदल चलकर पूरी की। अब तक मैं हिमालय से संबंधित आध्यात्मिक दंत कथाओं से भरी अनेक पुस्तकों को एक के बाद एक पढ़ चुका था। मेरा वहां पहुंचना एक सपने के साकार होने जैसा था। हिमालय की तलहटी के पहले ही दृश्य ने मुझे ऐसे अभिभूत कर दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तलहटी घने हरे जंगलों से ढकी थी और मुझे लगा मानो हर वृक्ष शांति बिखेर रहा है। आशाओं से भरे पूरा भरा झूमते हुए मैं अकेला एक पगडंडी से ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी दूरी पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर मेरे अंतःकरण में भावनाओं का तीव्र प्रवाह होने लगा। वो थी गंगा। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपना हाथ उसके बहते हुए शीतल नीले जल में डुबो दिया। मैं सिहर गया। मैं लगभग एक घंटे तक उस निर्जन स्थान पर बैठा रहा। इसके पश्चात नदी के तट पर चलते हुए मैं हिमालय के विख्यात संत स्वामी शिवानंद के आश्रम द डिवाइन लाइफ मिशन पर पहुंचा। यहीं पर रहकर उन्होंने तपस्या की थी एवं अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया था। ये उन्हीं राजसी वुडस्टॉक गुरु स्वामी सच्चिदानंद के गुरु थे जिनसे मैं दिल्ली में मिला था। स्वामी शिवानंद की उर्वर लेखनी जनकल्याण के कार्य और व्यक्तिगत आचरण के कारण विश्व ख्याति थी। मैं पहले ही उनके कुछ लेख पढ़ चुका था और इस स्थान पर आकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वहां प्रवेश करके मुझे उनके अनुयायियों से पता चला कि 1963 में इस जगत को छोड़ने से पहले स्वामी शिवानंद ने अपने शिष्यों में से एक स्वामी चिदानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब मैं वहां पहुंचा तो स्वामी चिदानंद वहीं थे। दो दिन तक मैं आश्रम के शांत वातावरण में रहा। चौथे दिन मैंने स्वामी चिदानंद से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मुझे एक सादे कमरे में ले जाया गया जहां स्वामी जी ने मेरा स्वागत किया। वे अत्यंत मिलनसार, आदरणीय और विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे अपने साथ भूमि पर बैठने के लिए कहा। मुझे उनके शिष्यों से पता चला था कि स्वामी चिदानंद का जन्म दक्षिण भारत में 1916 में एक बहुत धनी जमींदार के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। 20 वर्ष की अवस्था में उन्हें एक बैरागी साधु बनने की अंतःप्रेरणा हुई और उन्होंने समस्त भौतिक ऐश्वर्यों को त्याग कर भगवान की सेवा करने का निर्णय लिया। वे कुष्ठ रोगियों की सेवा करने लगे और अपने घर के विशाल उद्यान में उनके लिए झोपड़ियां बनाकर स्वयं उनकी देखभाल करने लगे। 1943 में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और स्वामी शिवानंद के ऋषिकेश स्थित आश्रम में चले आए, जहां शीघ्र ही एक कुशल प्रवक्ता के रूप में उनकी पहचान कायम हुई। प्रतिदिन प्रातः मैं उनका व्याख्यान सुनने जाता था। मुंडे सिर और भगवा वस्त्र धारण करने वाले वे क्षरहरे व्यक्ति थे, जिनका हिमालय के तपस्वी और पश्चिम के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं दोनों ही आदर करते थे। स्वामी जी पालथी मारकर योगासन में बैठे अपने हाथों के नपे तुले संकेतों के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी में प्रवचन कर रहे थे। जीवन का उद्देश्य भगवान का साक्षात्कार करना है। उन्होंने बल देते हुए कहा, यदि आप भगवत साक्षात्कार के बिना मर जाते हैं तो आपका जीवन निरर्थक है। आप भगवान द्वारा दिए गए इस बहुमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देंगे। उन्होंने साधकों की एक आम समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। व्यक्ति सुबह शाम ध्यान तो करता है, किंतु शेष दिन की गतिविधियों और व्यवहार में वह क्षुद्र मानसिकता और स्वार्थीपन दिखाता है। स्वामी जी ने दृढ़ विश्वास से बताया कि ऐसा व्यवहार घंटों ध्यान द्वारा प्राप्त फल पर पानी फेर देता है। उन्होंने सद्गुणों के विकास को आध्यात्मिक प्रगति का एक मूलभूत अंग बताया। इसकी तुलना खेत में से पत्थर, कंकर, खरपतवार और कांटेदार झाड़ियां निकालने से की, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है और उस पर एक सुंदर बगीचा बन सकता है। उन्होंने हमें दूसरों के लिए बलिदान करने की शिक्षा देते हुए बताया कि मर्यादाएं और नैतिक मूल्य योग रूपी वृक्ष की जड़ के समान हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिष्यों में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि इस युग में भगवान के पवित्र नाम जप द्वारा व्यक्ति भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, आपको भगवान के नाम जप का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंच जाते जहां मन में निरंतर जप चलता रहे, चाहे आप बैठे या खड़े हों, कुछ खा रहे हों या पी रहे हों, चल रहे हों या काम कर रहे हों, जगे हों या सो रहे हों। मुझे मालूम नहीं था कि भगवान का नाम जप कैसे किया जाता है, किंतु मैं चिदानंद जी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ। एक शाम हम दोनों लालटेन से प्रकाशित उनके कमरे के फर्श पर बैठे थे। वहां से गंगा और हिमालय की घाटी का सुंदर दृश्य नजर आता था। स्वामी जी उत्साहपूर्वक मेरी यात्रा का बारीकी से वर्णन करने लगे, यहां तक कि उन्होंने मेरे अंतरंग विचारों को भी प्रकट कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे मैंने अपना घर छोड़ा था और फिर भारत यात्रा की उत्कट इच्छावश जीवन को खतरों में डालता हुआ यहां तक पहुंचा था। मैंने कभी उन्हें ये सब नहीं बताया था, लेकिन उन्हें सब कुछ ज्ञात था। वे मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे थे और मैं सविस्मय तथा सादर से ग्रहण करता हुआ शांत बैठा रहा। ऐसा व्यक्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ था जो इतनी शक्ति और यश होने पर भी सरल और दयालु बना रहे। मैं एकांतवास और आत्मा के शुद्धिकरण हेतु उत्कंठित था, इसलिए मैंने स्वामी चिदानंद जी को धन्यवाद कहा और उनके आश्रम को छोड़ आगे बढ़ गया। अगले दिन प्रातः जब मैं गंगा नदी के तट पर बैठा था तो मैंने अपनी माँ को एक छोटा सा पत्र लिखा। प्रिय माँ, मैं यहाँ वही कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि यहाँ करना चाहिए। ऋषिकेश गंगा नदी के तट पर स्थित एक पावन तीर्थस्थल है। मुझे लगता है कि जो शांति और सुकून मुझे यहाँ मिला है उसमें बहुत कुछ सिखा जा सकता है। आपको ये बताना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मेरे लिए थोड़ा कठिन है। मैं यहाँ एक पर्यटक बनकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी आत्मा की खोज कर रहा हूँ। पूरब में रहना अमेरिका या यूरोप की जीवन शैली से पूर्णतः भिन्न है, यहाँ सब कुछ अलग है। ये कहना कठिन है कि मैं कब लौटूंगा, किंतु मैं अवश्य कहूंगा। मैं अपने पूरे परिवार और मित्रों को बहुत याद करता हूँ और आप सभी से मिलने को आतुर हूँ, किंतु आपको ये विदित हो कि पूरब में मैं जिस उद्देश्य को लेकर आया था वो मुझे निश्चय ही साकार करना है। मेरा उद्देश्य जीवन के सच्चे अर्थ की खोज करना है। आपका प्रिय पुत्र रिचर्ड, ऋषिकेश, हिमालय, भारत, जनवरी 1971। गंगा के पूर्वी तट से पार जाने के लिए मैं यात्रियों से भरी हुई एक नौका पर चढ़ा। सूर्य की किरणों से चुंधियाते पानी की लहरों में बड़ी बड़ी मछलियां हमारी छोटी नाव के इर्द गिर्द तैर रही थी। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे ऊपर से बह गुजरा, गहरी सांस लेते हुए मैं उसे पी गया। नदी तट पर वेद शास्त्रों का पाठ करते हुए छात्रों की सम्मोहक ध्वनि सुनाई दे रही थी। दूसरी ओर पहुंचकर मैं तट के किनारे दक्षिण दिशा में एकांत की खोज में चलने लगा। एक शांत स्थान पाकर मैं ध्यान में बैठ गया। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं अपने चिरपरिचित संसार से करोड़ों मील दूर हो गया था। घंटों पश्चात मैंने किसी को धीमे कदमों से अपनी ओर आते देखा। वे एक साधु थे, सुनहरा रंग, सफेद दाढ़ी, कंधों तक लंबे बाल और पर्वतीय पवन में लहराते वस्त्र, मानो उनके व्यक्तित्व से शांति प्रसारित हो रही थी। खड़े होकर मैंने उनका अभिवादन किया। अपनी बड़ी बड़ी एवं कोमल आंखें उठाकर वे बोले, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हारी दृढ़ता का निरीक्षण किया है। तुमने जो वस्त्र पहने हैं उन्हें अब गंगा को अर्पित कर दो, फिर मैं तुम्हें एक साधु के वस्त्र प्रदान करूंगा। साधु क्या होता है, मैंने पूछा। साधु भ्रमण करने वाला एक भिक्षुक होता है जो दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए संसारी आसक्तियों को त्याग देता है, या तुम उसे एक मंक भी कह सकते हो। उस पवित्र नदी के तट पर उन्होंने मुझे दो पतले सूती वस्त्र प्रदान किए। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एक कपड़े को शरीर के निचले भाग में लपेटकर लुंगी बनाई जाती है और दूसरे को ऊपरी हिस्से पर लपेटकर चादर। फिर उन्होंने मुझे लंगोट के लिए दो सूती पट्टियां दी जिन्हें कॉपीन कहा जाता है। इतने कृपालु संत से ऐसी भेंट पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हुए मैंने अपने पश्चिमी वस्त्रों को नदी की तेज धारा में प्रवाहित कर दिया। मेरी बंद गले की कमीज और जींस सदा सदा के लिए चले गए। जाने से पहले उन्होंने मेरे कान में कुछ शब्द कहे। कुछ देर पहले घर पर लिखे पत्र के संदर्भ में ये शब्द मुझे रहस्यमय लगे। गंगा तुम्हारी माँ बनेगी, उन्होंने कहा। आने वाले समय में ये रहस्य वो स्वयं प्रकट करेगी। कुछ दिनों पश्चात मैं वेद निकेतन पहुंचा। ये एक छोटा निर्जन एवं एक मंजिला आश्रम था जिसमें 10-12 सामान्य सुविधा रहित कमरे थे। वहां के निवासी कुंभ मेले जाने की तैयारी में थे। जब मैंने सुना कि इस विशाल धार्मिक मेले में 2 करोड़ लोग आने वाले हैं तो मैंने वापस रुकने का निश्चय कर लिया। वेद निकेतन से कुछ पीछे मुझे जंगल में एक गुफा मिली जिसे मैंने अपना निवास स्थान बना लिया। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले मैं गंगा माता के तट पर जाता और उसकी लहरों का आना जाना निहारता रहता। उस स्थान पर वो लगभग 100 गज चौड़ी थी और उसका तट चांदी जैसे मुलायम रेत से ढका था। छोटे कंकड़ों से लेकर हजारों किलो की चिकनी चट्टाने बहुरंगी रत्नजड़ित आभूषणों के समान तट पर फैली थी। मैं जिस संपत्ति की अभिलाषा कर रहा था उसके लिए स्वयं को पूर्णतः अयोग्य समझते हुए मुझे अपने शुद्धिकरण की गंभीर आवश्यकता का अनुभव होने लगा। तत्क्षण मैंने ये प्रण किया कि मैं 1 महीने तक मौन धारण करता हुआ सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रार्थना करूंगा। मैंने उपयुक्त स्थान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। मुझे तब नदी के बीच कुछ छोटी चट्टानें दिखाई दी। ये चट्टानें एक प्राकृतिक पुल बनाकर तट से लगभग 25 फुट अंदर एक विशाल समतल चट्टान तक पहुंच रही थी। ये चट्टान मेरी पसंदीदा जगह बनने वाली थी। मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक चारों ओर से गंगा के वेगवान प्रवाह से घिरी उस चट्टान पर बैठता। उस अद्भुत और विराट दृश्य के समक्ष मैंने स्वयं को अत्यंत तुच्छ पाया। सांझ ढलने पर भी जब मैं अपनी गुफा की ओर लौटता तो मुझे मार्ग में बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता जो एक पुराने टाट पर छोटी गाजरें रखकर बेचता था। जब मैं वहां से गुजरता तो वो मुझे गाजर दे देता। गंगा जल और प्रतिदिन 1 गाजर। मैंने निश्चय किया 30 दिन तक यही मेरा भोजन होगा। उस चट्टान का एकांतवास मेरा आश्रय स्थल बन गया। मैं सुबह से शाम तक आने वाले प्रवाह की ओर भी उन्मुख होकर बैठा रहता। मेरी बाईं ओर के तट पर मुझे ध्यान में बैठे इक्का दुक्का योगी दिख जाते और मेरी दाईं ओर हिमालय की सुंदर तलहटी फैली हुई थी। सबसे निकटतम पर्वत ने अपने शिखर पर हृदय का आकार धारण किया हुआ था। मैं घंटों तक उसे निहारता और सोचता कि मेरे लिए ये भगवान के हृदय का प्रतीक है। एक ऐसा हृदय जो अनंत है और सभी जीवों को अनंत आश्रय देता है। ऐसा हृदय जो कृपालु और सुंदर है। जिस प्रकार पर्वतारोहण करते समय हम उस धरती को छोड़ देते हैं जिस पर हम पहले खड़े थे, उसी प्रकार भगवान के हृदय तक पहुंचने के लिए हम सभी को अपनी प्रतिकूल सांसारिक आसक्तियों को पीछे छोड़ना होगा। एक सच्ची आध्यात्मिक साधना पहाड़ पर चढ़ने के समान है और हमें चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें आशा से ऊपर देखते रहना चाहिए। पर्वत उन सभी को सहारा देता है जो उसके शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार यदि हम निष्कपट भाव से भगवान की आराधना करते रहेंगे तो वे हमें ऐसे सभी साधन मुहैया कराएंगे जिनसे हम उनके परम कृपालु हृदय तक पहुंच सकेंगे। मेरे चारों ओर सभी दिशाओं में गंगा मैया अपने चमचमाते एवं लहराते जल की सर्द पोशाक धारण किए हुए चंचल गति से बह रही थी। उसकी लहरें कभी हिलोरे लेती तो कभी भंवरों में घूमती, मानो अपने ही मादक सौंदर्य से अभिभूत हो अठखेलियां कर रही हो। कोई भी मानवीय कलाकार इस निर्बाध प्रदर्शन के एक क्षण को भी कैद नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही लहरों से कोई कलाकृति उभरती, उसी क्षण वो लुप्त भी हो जाती। मैंने इससे एक शिक्षा ग्रहण की। इस संसार की सभी सुंदर आकृतियों का परिवर्तन ही की प्रक्रिया में है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर क्षण के साथ हमारी वास्तविकता बदलती रहती है। जिस प्रकार गंगा माता प्रकृति के समान शाश्वत है, किंतु उनका कोई भी रूप शाश्वत नहीं है, इसी प्रकार इस जगत में हमें जो भी प्रिय है वो अनदेखे ही विलुप्त होता जाता है। हम किसी भी वस्तु को पकड़कर नहीं रख सकते, किंतु यदि हम सतह के नीचे बहते सत्य रूपी प्रवाह के सौंदर्य की सराहना कर पाते हैं, तो हम एक ऐसी वास्तविकता को छू सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, जो सुख और दुख की चंचल लहरों से कहीं अधिक स्थिर है। मैं एक आज्ञाकारी छात्र के समान बैठा अपने शिक्षक से सीखने का प्रयत्न कर रहा था। गंगा अपने पथ का आरंभ हिमालय की ऊंचाइयों से करती है और सागर तक अविरल बहती है। असंख्य बाधाएं जैसे विशाल शिलाएं, गिरे पेड़ और पहाड़ उसका मार्ग रोकते हैं, किंतु सागर तक उसकी यात्रा को कोई नहीं रोक पाता है। अत्यंत सुंदरता के साथ वो कभी बाधाओं के ऊपर से, कभी नीचे या कभी उनके आसपास से रास्ता बनाकर बहती रहती है। गंगा माता हमें सिखाती है कि यदि हमें अपनी सागर तुल्य अभिलाषाओं तक पहुंचना है, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में दृढ़ रहना चाहिए और मार्ग में आने वाली अपरिहार्य बाधाओं से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। नदी रूपी जीवन में ये सारी बाधाएं चट्टानों के समान हैं। हमें उनके आसपास या ऊपर नीचे से अपना मार्ग निकालकर चलते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान की सहायता से कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलता है। उस शिला पर बैठा मैं सोचने लगा कि नदी के प्रवाह को देखना बीते जीवन को देखने जैसा ही है। यदि कोई नदी के अंदर है तो वो उससे बहुत प्रभावित होता है, किंतु यदि वो तट पर बैठा है तो संयमी होकर उसका अवलोकन कर सकता है। गंगा मैया हमें सिखलाती हैं कि यदि हम अपने अहंकार, मन, इंद्रियों और जगत के झंझावात से विरक्त होकर संयम से जीवन का अवलोकन करेंगे, तो हमें विवेक बुद्धि प्राप्त होगी। प्रत्येक शाम सूर्यास्त के पश्चात मैं जंगल में अपनी गुफा में आता और दिन भर प्राप्त हुई शिक्षाओं पर मनन करता। एक दिन मैंने सोचा कि कैसे लाखों वर्षों का इतिहास इन तटों पर घटित हुआ था। आर्यों के काल में आध्यात्मिकता फली फूली। महान सिकंदर आया और चला गया। तब मुगलों ने उत्तर भारत को जीतकर सदियों तक शासन किया। उन्हें नष्ट किया अंग्रेजी साम्राज्य ने, और जिसे अंततः महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने खदेड़ बाहर किया। गुलामी और आजादी, युद्ध और शांति, राजनीतिक जीत और हार, ये सब ऋतुओं के समान आए और चले गए। इन सब के बीच कालातीत गंगा मैया धैर्य के साथ सागर की ओर बहती रही। इस प्रकार सत्य भी अपरिवर्तनशील है। इस जगत में चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो कितना भी नाटकीय क्यों न हो, वो सत्य के प्रवाह में विघ्न नहीं डाल सकता। मैंने धारा में अनेक वस्तुओं को प्रवाहित होते देखा, जिनमें पत्ते, फूल, जड़ से उखड़े पेड़, एक मृत भैंस, मानव शव आदि सभी थे। मैंने सोचा कि यदि कोई वस्तु नदी के बहाव से अलग नहीं होती तो वो अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है। लेकिन काल के प्रभाव में अधिकतर वस्तुएं तट की ओर मुड़ जाती हैं और उनकी प्रगति थम जाती है। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु गंगा माँ के प्रवाह के समान हैं एवं शिष्य उन वस्तुओं के समान हैं जो उसके प्रवाह के साथ बहती हैं। यदि अनुयायी गण श्रद्धापूर्वक गुरु की पवित्र शिक्षाओं के प्रवाह में रहते हैं तो आध्यात्मिक सत्य के सागर तक उनका पहुंचना अवश्य संभव होगा। परंतु तट पर अनेक प्रलोभन और मोड़ मिलते हैं और वे सुख और आराम का आश्वासन देकर अनुयायी को उस प्रवाह से विलग होने के लिए फुसलाते हैं। सभी अनुयायी श्रद्धावान नहीं रह पाते, किंतु जो रहते हैं वे ज्ञान के सागर तक पहुंच जाते हैं। मैं विचार करने लगा, मेरे गुरु कौन होंगे? क्या मैं श्रद्धावान बना रह पाऊंगा? एक दिन सूर्योदय से पहले जब मैंने नीचे बहती उस धारा को देखा जो कभी सोती ही नहीं थी, तो मैं उसके हजारों मील लंबे प्रवास पर विचार करने लगा। सागर पुकार रहा था और धारा में बहती जल की हर बूंद धीरता से दूर अपने अंतिम गंतव्य तक बही जा रही थी। गंगा मैया मुझे सीख दे रही है कि अपने अंतकरण की पुकार का अनुगमन करने के लिए मुझे धैर्य और स्थिरता की आवश्यकता है। मैंने कभी भी इस बात पर पुनर्विचार नहीं किया कि मैंने इस जगत के सुखों को छोड़ा और क्यों गंगा के मध्य इस शिला पर अकेले बैठकर एक स्वनिर्धारित कठोर व्रत को सहना स्वीकार किया। क्यों मैं एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति ऐसे असामान्य कार्य कर रहा था? उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे चुनाव थे। मुझे लगा कि नियति का रहस्यमय हाथ मुझे आगे ले जा रहा था। ठिठुरती सर्दी में एक दिन जब मैंने ध्यान में मैं मग्न था, मेरे मन में हारमोनिका के मधुर राग बजने लगे। उन्होंने सभी ओर से मेरे ध्यान को खींचकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी चेतना विवश हो उस काल्पनिक संगीत की ओर खींची जा रही थी। मेरे मन के रंगमंच में एक के बाद एक संगीत समारोह होने लगे। एक लालसा मुझे अपनी प्रिय हारमोनिका के साथ पुनः मिलने की एक उकसाने लगी, जिससे भारत आने के पश्चात मैंने कभी बजाया ही नहीं था। प्रतिदिन मैं निष्ठापूर्वक सूर्योदय से पहले अपनी प्रिय शिला पर जा बैठता और सूर्यास्त के पश्चात ही उठता, किंतु वो दिन कुछ अलग था। एक आवेग मुझे खींच रहा था, इसलिए शिला तथा नदी को पीछे छोड़कर मैं हारमोनिका बजाने के लिए गुफा में लौट आया। जब मैंने हारमोनिका को अपने होठों से लगाया तो कुछ अजीबोगरीब घटना घटी। एक अदृश्य शक्ति मुझे नदी तक वापस लौटने के लिए बाध्य करने लगी। हर पग के साथ मेरी अधीर इंद्रियां उसे हारमोनिका को बजाने के लिए तड़प रही थी। गंगा माता के प्रवाह के बीच से चलकर मैं रेंगते हुए अपनी शिला पर पहुंचा। वहां अपनी अन्य दिनों के समान ही मैं ठंडी खुरदरी सतह पर बैठ गया, किंतु आज मेरे हाथ में हारमोनिका थी और मेरा हृदय स्नेह की एक ऐसी तरंग से अभिभूत हो रहा था जिससे मेरा शरीर कंपायमान होने लगा। लकड़ी और धातु का एक टुकड़ा कैसे ऐसी भावनात्मक स्थिति को जागृत कर सकता है? यह हारमोनिका मेरी एक प्रिय संगी थी जिसमें मेरे हृदय की अंतरंग भावनाएं भरी थीं। हमारा संबंध इतना गोपनीय था कि मैं उसमें ऐसे रहस्य फूंकता जो भगवान और मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को ज्ञात नहीं थे। वो मेरे आंतरिक सुख दुख एवं आशाओं को मधुर संगीत में रूपांतरित करती रही। समय के साथ हम दोनों के बीच संगीतकार और वाद्य यंत्र का एक सहज वार्तालाप विकसित हो गया। अनेक प्रकार से हम दो प्रेमियों के समान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हारमोनिका भी ईर्ष्यालु होकर मेरे पूरे ध्यान की मांग कर रही थी। मैं सोचने लगा कि वास्तव में मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं। दूरस्थ पर्वतों से आती धारा को देखते हुए एक निःशब्द उदासीनता मेरे हृदय को छू गई। मैं समझ गया कि मेरी विश्वसनीय संगी अब मुझे मेरे मार्ग से भटका रही थी। उस शिला पर खड़े होकर मैं गंगा के गहरे नीले जल में झांकने लगा। तब मैंने अपनी हारमोनिका को देखा, ये जानते हुए कि उस जैसा दूसरा हजारों मील तक नहीं है। द्रवित हो मैंने अपना हृदय अपने चिरसंगी के सामने उड़ेल दिया, इस बार गीत में नहीं अपितु सरल शब्दों में। प्रिय मित्र, इतने दिनों तक मेरी विश्वसनीय संगी बने रहने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। वेदना और अकेलेपन के बीच तुमने सदैव मेरे साथ रहकर मुझे सांत्वना और सुख दिया। कितने धैर्य से तुमने मेरे अंतकरण के विचारों को सुना और जिन शब्दों को मैं कह नहीं सकता था तुमने उन्हें ऐसे गीतों में ढाला जिन्होंने लोगों के हृदय को छू लिया। मुझे रुलाई आ गई। फिर मैंने अपनी आंखें पवित्र नदी की ओर मोड़ी और प्रार्थना की, हे गंगा मैया, अपनी सर्वप्रिय वस्तु को आपको अर्पण करके मैं अपना अयोग्य हृदय भगवान को अर्पित करना चाहता हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। अपने दोनों हाथों से मैंने अपनी हारमोनिका को कलेजे से लगाया और फिर हिमालय की पवन में उसे उड़ा दिया। वो यंत्र ऊपर पड़ा और फिर लहराते हुए नीचे उतरा। फ्लप, उसके गिरने की आवाज सुनकर मेरा हृदय सिहर गया और मेरा प्रिय मित्र सदा सदा के लिए गंगा में विलीन हो गया। अक्सर जीवन के बहुमूल्य उपहार इस प्रकार मिलते हैं जिनकी न तो हमने योजना बनाई होती है और न ही उनकी आशा की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संयोग से होता है, कुछ इससे कर्मों की गति कहते हैं और कुछ अन्य विश्वास करते हैं कि भगवान किसी भी क्षण हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये दोपहर जब मेरा चिंतन मेरी ध्यान साधना से हटकर गंगा मैया की लहरों के संगीत की ओर मुड़ा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी सुंदर प्रबल लहरें ज्ञान और प्रेम का एक गीत गा रही थीं। उस मधुर गीत को मंत्रमुग्ध होकर मैं सुन रहा था और वही मेरा ध्यान बन गया। सुबह से शाम तक मैं केवल नदी के गीत पर ही ध्यान करता था। कुछ दिनों पश्चात ठिठुराती हवा में बैठे हुए मैंने ऊपर हिमालय के आकाश को निहारा। दूधिया सफेद बादल नीलम के एक अनंत गुंबद में उड़ रहे थे। मेरे नीचे बहती धारा भंवर में घूमती और हिलोरे लेती हुई झाग उत्पन्न कर रही थी। नदी के कलकल स्वर ने एक ऐसे संगीत की रचना की जिसने मुझे अपने विचारों के बंधन से मुक्त कर दिया। तभी नदी के संगीत से हजारों दिव्य स्वर उमड़े, सभी ने एक स्वर में उच्चारण किया, ओम। इस ध्वनि ने मेरे मन को वशीभूत कर लिया। एक अन्य शाम जब सूर्यास्त हो रहा था मैंने सर्दी के सुनहरे बादलों को गहरे नीले आकाश में उड़ते देखा। जामुनी परिधान पहने पर्वत इतने सजीव प्रतीत हो रहे थे कि मुझे लगा मानो वे सांसें भर रहे हों। सफेद बगुले, काली बुलबुलें, हरे तोते और चटकीले नीले लाल और संतरी रंगों वाले पंछी आकाश में उड़ रहे थे। प्रत्येक परिंदा चहचहाते हुए कूजन करते हुए अथवा गिटकरी भरते हुए अपने अपने मधुर गीत गा रहा था। पक्षियों के गीतों के अलावा उस शाम गंगा की घाटी प्रशांत थी, लगभग एक अलौकिक खामोशी से भरी हुई। मेरा मन यह स्मरण करते हुए उड़ने लगा कि कैसे भगवान ने मुझसे इतना कम लेकर इतना अधिक दिया है। एक क्षण के लिए मैंने सोचार किया कि व्यक्ति स्वयं को कृपा के लिए जितना अयोग्य समझता है, कृपा मिलने पर वो उतना ही कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता ही वो गुण है जो हृदय को भगवान का आशीर्वाद स्वीकारने के योग्य बनाता है। अपने नेत्र मूंद कर मैं फिर से नदी द्वारा गाए जा रहे ओम के अनंत गान में डूब गया। वह अत्यंत मनोरम था। मुझे लगा कि अभी मैं किसी असाधारण घटना की कगार पर खड़ा हूं। फिर मैंने कुछ ऐसा सुना जो मानो गंगा मैया की हृदय की गहराइयों से उभर कर आया था। हजारों दिव्य ध्वनियों ने मिलकर मधुर स्वर में गीत गाया जिसकी झंकार संपूर्ण घाटी में गूंजती हुई प्रतीत होने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लगा जैसे नदी द्वारा ये गीत गवाकर भगवान ने इस अत्यंत मनोरम मंत्र को मेरे कानों में धीमे से कह दिया। ये एक अलौकिक दीक्षा संस्कार था जिसने मुझे एक ऐसी लहर पर आरूढ़ कर दिया जो मुझे मेरी आकांक्षाओं के और समीप ले आई। मेरा हृदय कृतज्ञता से आप्लावित हो उठा। अकस्मात मैंने खुद को अपना लंबा मौन व्रत तोड़कर इस मंत्र को नदी के साथ मिलकर उच्च स्वर में गाते पाया। धरती का कोई भी नशा उस अनुभव के निकट भी नहीं आ सकता था। उस गीत के अर्थ से मैं अनजान था, लेकिन उसने मेरा चित्त चुरा लिया था। क्या था उसका अभिप्राय? मुझे विश्वास था कि उस नीले लड़के के चित्र के रहस्य के समान ये रहस्य भी आने वाले समय में स्वतः उद्घाटित होगा। अपनी हारमोनिका के गीत का बलिदान करने पर मुझे गंगा का गीत धरोहर में प्राप्त हुआ। यहां खंड दूसरा और अध्याय तीसरा समाप्त होता है।